نمبر کو ریڈ کرنا ہے، 24 کے دانے کا پتا کرنا ہے، ریکارڈ چلا ہے بھولے ناتھ سے نرالا کوئی اور، بےحد کے باپ کا نام ہے بھولا ناتھ، ضرور منشی سے دیوتا بنانے والا بھی کوئی ہے، کیونکہ منشی تو سب ہیں آسوئی سمپردائے، وہ منشی کو دیوتا بنائے نہیں سکتے، ان کے لیے ہی گایا ہوا ہے منشی سے دیوتا کی کرتن لاگی وار، ان کے لیے ان کے لیے نہیں، ان کے مانا کن کے اور ان کے مانا کن کے، ان کے کہتے تو برہما کی طرف اشارہ کرتے تھے، برہما کے لیے یہ بات گائن میں نہیں تھی، دادا لیکراج کے جو پارٹ برہما کا پارٹ تھا اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، کون سی بات، کون سا گائن، منشی سے دیوتا کی یہ کرت نہ لاگی باپ، ان کا تو نئے میں شریر بھی چھوٹ گیا، لیکن ستیہ کو تو آنا ہے، دیوتائی دنیا تو آنی ہے امر لوک میں، دیوتائیں رہتے ہی ہیں امر لوک میں، یہ ہے مرتی لوک، سوکھم میں مرتی لوک کیا ہوا اور استھول میں مرتی لوک کیا ہے، استھول میں تو استھول مرتی ہوتی رہتی ہے اور سوکھم مرتی لوک نشچے ہوا جنم لیا بچے نے کہ میں ایشور باپ کا بچہ ہوں، اور انشچے ہوا مرتی ہو گئی، تو یہ نشچے انشچے کا جنم مرن کا چکر اس دنیا میں چلتا ہے، ابھی امر لوک نہیں کہیں گے، ضرور باپ آ کر کے مرتی لوک میں امر کتھا سنائیں گے امر بنانے کے لیے، اب منشی سے دیوتا کی کرتن لاگی وار یہ کس کو کہا جائے، ضرور اکال موت پرم پتا پرماتما جو آج سناتن دیوی دیوتا دھرم کی رچنا کرنے والا ہے ان کے لیے کہا جائے، اس کے لیے جو اکال موت ہے، اکال من کو کال کھا نہیں سکتا، مورت بھی ہے ایسے نہیں اس کی مورتی نہیں ہے، ساکار روپ نہیں ہے، اچھا بھلا کس ورنوں کے منشیوں کو دیوتا بنائیں گے، ورن بھی شاستر میں گائے ہوئے، پرم پتا پرماتما برہما سن سے رچنا رچتے ہیں، ایڈاپٹ کرتے برہما دوارا ضرور شودروں کو ہی ایڈاپٹ کیا ہوگا اور کرتا ہوگا، تو کہیں گے کہ شودر ون کے منشیوں کو براہمن ون میں لے آتے ہیں، اتنے سبھی بچے کہتے ہیں کہ ہم برہما کمار کماری ہیں، برہما کی سنتان ہیں، پرجا پتا ہے تو ضرور دھرم کے بچے ہوں گے، وہ ونسا والی مات پتا کی چاہیے نا، برہما کی بھی مکھ ونسا والی کہیں گے، بابا کی بھی مکھ ونسا والی تو دادی کی بھی مکھ ونسا والی ٹھہری، کھ ونسا والی کا تو یہاں نام ہی نہیں ہے، وہ کلیوگی برہمن ہے کھ ونسا والی، کھ مانا گود، اور تم برہمن ہو مکھ ونسا والی، کیوں، کیونکہ تم مکھ سے نکلے ہوئے ورتن کے آدھار پر برہمن بنے اور وہ گود کے آدھار پر، گود میں کھیلنے کے آدھار پر برہمن بنے ہیں، وہ برہمن تو ایک دو کا ہتھیالا باندھتے ہیں بک پلانے کے لیے، ایک دو کا ہاتھ کس لیے ملاتے ہیں، بک پلانے کے لیے، اور تم برہمن امرت پلانے ہیں، پرماتما سے ہتھیالا باندھتے ہیں، ہم کوئی منشی سے ہتھیالا نہیں باندھتے، کیا وہ برہمن کیا کریں گے، वो ब्राह्मण है तो अपनी बच्चियों को ब्राह्मणियों को किसी आदमी के हाथ में दे देंगे, पुरुष के हाथ में, इनकी रक्षा करो, और बाप यहाँ क्या होता है, यहाँ यहाँ हथियाला कैसे बांधा जाता है, किसके साथ है? तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने के लिए पीने के लिए परमात्मा से हथियाला बांधते हो, क्या फर्क हुआ? वो ब्राह्मण हथियाला एक दो का बांधते हैं किसके साथ है? मनुष्य मनुष्यों के साथ, जैसे पिलाने के लिए बांधते हैं। और तुम परमात्मा से हथियाला बांधते, तो देखो कितना अंतर हो गया। वो नरकवासी बनाने वाले, नरकवासी माने नरक माने वैश्यालय, विषय माने व्यभिचारी, वो नरकवासी बनाने वाले और ये है स्वर्गवासी बनाने वाला। कैसे? शिव के मंदिर को क्या कहेंगे? शिवालय कहेंगे। शिवालय में एक ही पूजा होती है, एक बीच में बैठा हुआ है और बाकी सब देवताएं बाजू में रखे हुए हैं चारों तरफ। सब किसकी उपासना करते हैं? एक ही उपासना करते हैं। और वैश्याल में क्या होता है? वैश्याल में वैश्या एक और पूजा कितनों की करती है? देवों की पूजा करती है। ज्ञानामृत से मनुष्य से देवता यह बनाते। हम जब ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी तो मिलती है, सगे और लगे भी होते हैं ना। लगे बच्चों को इतना मदद नहीं मिलेगी, कब की बात बताई जी है? लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी, माना जब कयामत होगी, विनाश होगा, तो जो लगे बच्चे होंगे उनको मदद नहीं मिलेगी, लेकिन मातेले जो बच्चे होंगे उनको मदद मिलेगी। लगे बच्चों को उतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। बाप का लव भी सगे पर ही रहता है, सगा बच्चा न होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम बच्चे वर्णों को जानते हो, बल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ही नहीं सकता कि इनसे क्या होता है। विराट रूप का चित्र को बनाते हैं लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बता सकते, किसकी? उस विराट पुरुष की। अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता फिरता है, इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में। यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है, 84 जन्म सिद्ध करके बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, जरूर सबको बनना ही बनना। देवताएं जो सतो प्रधान थे वो फिर आकर के तमो प्रधान बन गई। अब ये मनुष्य शक्ति का झाड़ जर्जरीभूत हो गया, अर्थात कब्र दाखिल हो गया। कब्र दाखिल होना माना कब्र में क्या होता है? मिट्टी मिट्टी होती है, तो जो भी जीव आत्माएं हैं वो काय में दब गई हैं, देह अभिमानी की मिट्टी में दब गई, जैसे कब्र दाखिल हो गया। ये है कयामत का समय, सभी का पुराना हिसाब किताब चुकू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खातों पर, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता चला है, ऐसे नहीं कि एक ही बार है सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है, नहीं। फिर पापात्मा कैसे बने? दिन प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वो क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु तो बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान संन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वो तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु तो कैसे पाते हैं? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, कोई वापस नहीं जा सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी, पहली बात है सर्वव्यापी की, अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, बाप और साथ में बाप की रचना, सिर्फ बाप नहीं उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो, फिर संगम योगी की जगदम्बा जगत पिता उनको भी जान लिया है, जगदम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य है एक जगदम्बा सरस्वती, यह ब्रह्मा व्यक्त है जो फिर अव्यक्त बनता है, अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। क्या कहा, नोट करना, यह ब्रह्मा व्यक्त है, यह वह नहीं, यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है, अव्यक्त बनता है माना फरिश्ता बनता है, अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। यह ब्रह्मा नहीं, अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा, वह क्यों कर दिया, दूर क्यों कर दिया, जरूर भविष्य में उस ब्रह्मा का पार्ट बजने वाला है जो अव्यक्त स्टेज वाला होगा, व्यक्त शरीर में होते हुए भी जैसे अव्यक्त स्टेज, जैसे कि है ही नहीं इस दुनिया में, अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं, रजनीका प्रिंस बनते हैं, क्या बनते हैं, साकार महाराजा नर से नारायण, फिर 84 जन्म शुरू होते हैं, नारायण बनते ही कौन से जन्म शुरू हो जाते हैं, 84 जन्मों का चक्र उनका शुरू हो जाता। अब तुम धंधा दोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्मय बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे, गाती है ना कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कहेंगे कि सन्यासियों में तो पवित्रता का गुण है, परंतु वो तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है और गीता किसने ने गाई है, ये दो बड़ी बड़ी भूलें कर देते, सन्यासियों में पवित्रता का गुण तो है लेकिन ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं तो बुद्धि कहाँ टिकेगी, सर्वव्यापी में टिकेगी कि एक में टिकेगी, एक व्यापी में टिकेगी, बुद्धि सर्व में टिकेगी या एक में टिकेगी, सर्व में टिकेगी, तो बुद्धि विविचारी हुई या विविचारी, बुद्धि तो विविचारी होगी, जब बुद्धि ही विविचारी होगी तो पवित्रता का गुण कहाँ रहा, एक तो ये बड़ी भूल करते हैं कि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, जो संगली पे बैठा बस उसको क्या समझ लो है? कौन सुना रहा है, भगवान सुना रहा है, भगवान हमको श्रीमत दे रहा है, अरे मनुष्यों की मत मनुष्यों की होगी, श्रेष्ठ मत परमात्मा की ही हो सकती है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है, तो पहली भूल तो सर्वव्यापी की, और दूसरी भूल, दूसरी भूल कौन सी, गीता कृष्ण ने गाई, क्या बुद्धि में बैठ जाता उनके, कौन सन्यासी की बुद्धि में बैठता है गीता कृष्ण ने गाई, उसकी सूचिंग कौन करता है, ब्राह्मणों की दुनिया के जो सन्यासी हैं उनकी बुद्धि में भी यही बैठ जाता है कि गीता ब्रह्मा ने गाई, कृष्ण कहो अथवा संगम युग में क्या नाम को ब्रह्मा को, कि गीता का भगवान जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, बाकी कोई गीता का भगवान नहीं, ये कहना भी कितनी अपवित्र बात है, क्या गीता का भगवान कृष्ण है इसमें अपवित्रता की क्या बात हो गई, अरे सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण, उसमें अपवित्रता कहाँ से आ गई, उस सत्यु के कृष्ण बच्चे की बात ही नहीं, वो गीता का भगवान हो ही नहीं सकता, वो तो रचना हो गई, रचयिता बाप तो उसको जन्म देने वाला कोई और होगा ना कृष्ण बच्चे को, कि कृष्ण बच्चा ऊपर से आ जाएगा, शत्रुघ्न में जो कृष्ण बच्चा पहला बच्चा पैदा होगा वो किसी से तो जन्म लेगा, किसी की तो रचना हुई, तो उसका भी कोई रचयिता है। अगर रचना को रचयिता कह दिया जाए, बच्चे को ही बाप कह दिया जाए, तो ये तो जुल्म हो गया। किसके ऊपर जुल्म हुआ? सबसे पहले जन्म हुआ माँ के ऊपर, कि माँ का पति किसको बना दिया? बच्चे। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही गड़बड़ हो गया। जो मम्मा बाबा को कंट्रोल करने वाली आत्माएं थी मुर्गियों में, जिनके लिए जिक्र आया है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं। तो जो बच्चे मम्मा बाबा जैसी सशक्त आत्माओं को भी कंट्रोल करते थे, वो उनसे ज्यादा पावरफुल हुए या कमजोर हुए? वो रचयिता हुए या रचना हुए? जरूर रचयिता हुए। इसलिए मुर्गियों बोलते हैं ब्रह्मा का भी कोई बाप था। ब्रह्मा का बाप कौन? तो वो ही बच्चे ब्रह्मा के भी बाप हुए। तो ये कहना भी कितनी अपवित्र बात है कि गीता कृष्ण ने गई, उसमें अपवित्रता की बात हो गई ना, कि बच्चे को माँ का पति बनाई दिया, गीता पति भगवान बनाई दिया। इससे सभी का बेहद का बाप से बुद्धियोग टूट जाता है। कृष्ण से बुद्धियोग जुट गया माने ब्रह्मा से बुद्धियोग जुट गया, और जो यज्ञ के आदि में यज्ञ पिता था उससे बुद्धियोग टूट गया, उसका नाम ही गुम कर दिया। सत्संग स्थापन करने वाला कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो सत्यखंड में रहने वाला है। सत्यखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। क्या कृष्ण बच्चा सत्युग में होगा तो सत्युग पहले से स्थापन हुआ पड़ा होगा या बोल स्थापन करेगा? सत्युग बच्चे आज जो कृष्ण पैदा होगा सत्युग में, वो सत्युग में पैदा होगा या सत्युग में वो वहां जाकर के सत्युग स्थापन करेगा? सत्युग तो पहले से ही स्थापन हुआ पड़ा है ना, लेकिन प्रैक्टिकल स्थापन करने वाला कोई तो साकार रूप में होगा ना, निमित्त तो कोई बनेगा कि बिंदी फुद फुद के निमित्त बनेगी? बिंदी के लिए कहें कि बिंदी ने स्वर्ग स्थापन किया, नई दुनिया की रचना की। रचयिता भी साकार चाहिए और रचना भी साकार चाहिए, बाप भी साकार चाहिए और उसका वर्षा भी साकार चाहिए, भले निराकारी स्टेज वाला हो बाप। तो सत्यखंड स्थापन करने वाला एक बाप है, उल्टी बात बतलाने से मनुष्य मात्र निर्धन के बल पड़े, जिनका कोई धनी धोरी नहीं रहा, सबकी अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, देह अभिमानी के कारण ही और सब विकार आते हैं। क्या अगर ये गधा न हो रावण के सिर पर, पांच विकार पांच सिर दिखाई जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रावण के सिर, और उनके ऊपर कौन सा सिर दिखाया जाता है? गधे का सिर। तो देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह अहंकार छोड़ दो, डायरेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट कहते हैं, क्या मतलब? डायरेक्ट कैसे कहेंगे? उनको देह है, कहते हैं मुझे तो देह है नहीं, फिर डायरेक्ट कैसे कहेंगे? जरूर डायरेक्ट बाप का पार्ट चलता है, ऐसे नहीं माँ के थ्रू चलता है। माता का पार्ट अलग और बाप का डायरेक्ट पार्ट, वर्षा देने वाला पार्ट अलग, बीजारोपण ज्ञान का करने वाला पार्ट अलग। तुम इन आर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भी नाश हो जाए, कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो जाए और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे समझते हो, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये बात समझते हो कि मैं बनाता हूँ, कोई मनुष्य नहीं बनाता है। कैसे बनाता हूँ, क्या सिखला करके बनाता हूँ? राजयोग सिखला करके स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। उस योग में राज भरा हुआ है। मनुष्य कोई राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकता। कौन सा राजयोग? जिसमें इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अब बाप तुमको सत्य समझाते, तुम सत्य के संग में बैठे हो। क्या सत्संग किसे कहें? सत्य का संग हो तो सत्संग। दुनिया में सब कैसे हैं? सत्य हैं कि झूठे हैं? दुनिया में तो सब झूठे हैं। एक सतगुरु तारे और अनेक गुरु बोल। सतगुरु जब एक गाया जाता है तो बाकी गुरु तो सब झूठे हो गए। तो सत्य एक है और एक सत्य के संग में तुम बैठे हो। प्रैक्टिकल में सत्य सुनने के लिए बैठे हो और सत्य खंड का मालिक बनने के लिए बैठे हो। उनका नाम ही सच्चा है। वो है सच्चा सच्चा ज्ञान सागर। फिर दूर कर दिया। बोलने वाली सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ब्रह्मा के बाजू में ही बैठ करके बोल रही है। फिर क्या बोलते हैं? उनका नाम ही सच्चा है ज्ञान सागर। उनका कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जरूर है, जो ज्ञान सागर प्रैक्टिकल बाप है वो प्रैक्टिकल में पार्ट अभी भविष्य में बजने वाला है। तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वो नदियां तो पानी के सागर से निकलती है। क्या पानी के सागर से? चैतन्य नदियों की बात है या जड़ नदियों की बात है? चैतन्य नदियां भी पानी की होती हैं। पानी को मथने से कुछ भी नहीं निकलेगा। पानी का मंथन करने से कुछ निकलेगा? सागर को मंथन करेंगे तो निकलेगा। तो वो नदियां तो पानी के सागर से निकलती है। क्या तुम ज्ञान सागर से निकलती है? ज्ञान सागर से निकली हुई नदियों में और पानी के सागर से निकली हुई नदियों में अंतर क्या होगा? उनका मनन चिंतन मंथन चलेगा और उनका मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। उनका देह और देह की है, दुनिया की बातों का ही मनन चिंतन मंथन चलेगा। मकान बनाओ, ये करो और प्रदर्शनी करो, मेले करो, मलागड़े करो। जो मन के उत्थान का कार्य है, मनन चिंतन मंथन जो चलना चाहिए सो नहीं चलेगा। तो वो नदियां तो पानी के सागर से निकलती है। वो पतित पावनी कैसे कहाई जा सकती है? कौन सी? जिन्हें पानी के सागर से निकली हुई नदियों का मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं। किस बात में मनन चिंतन मंथन? नई दुनिया कैसे आएगी? क्या तरीका होगा? कौन लाने वाले होंगे? इन बातों में उनकी बुद्धि नहीं चलेगी। ज्ञान की बातों में, ज्ञान के पॉइंट्स में उनकी बुद्धि लेन देन में नहीं चलेगी। पति तो पावन तो परमात्मा ही होगा ना। जो ज्ञान का सागर है वो गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। ज्ञान सागर तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। और गंगा, गंगा आदि नदियां तो सीमित सीमा में है। क्या सीमित है? वो तो सीमा में। ये तो बेहद के बाप का ही काम है। क्या? पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, उन पतितों को पावन बनाने का काम एक बाप का है। तो शूद्र से ब्राह्मण तुम बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सत्व प्रदान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है, सेवा कर रहे हैं। ईश्वरीय संतान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या लक्ष्मी नारायण तो देवता हो गए? वो तो देवताएं तो होते ही है नई दुनिया में, उनको नई दुनिया स्वर्ग बनाने की क्या दरकार, वो तो पहुंच ही गए जन ऐसी दुनिया में, तो बनाता कौन है? तुम ब्राह्मण बच्चे बनाते हो, तो बाप बनाते हैं, बच्चे सहयोगी बनते हैं, ब्राह्मण द्वारा बनवाते हैं न कि देवताओं द्वारा बनवाते हैं। क्या नई दुनिया पुरानी सृष्टि में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है, हाथ बच्चों को लगवाते हैं, लेकिन करण करावन हार गाया कौन जाता है? बाप बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया, बच्चे भी सहयोगी बनते हैं मकान बनाने में, बाप मकान बनवाता है तो दुनिया नाम किसका लेगी? बच्चों ने बनाया अलग अलग, बच्चों का नाम लेगी या बाप का नाम लेगी? किसने मकान बनवाया? बाप का नाम लेगी। तो बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया, नई चीज को पुराना तो हो नहीं, लोग बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा, ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, तत्व प्रधान से तमो प्रधान हर से ही जरूर बनेगी, वैसे ही सारी शक्ति भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ करके अपन को आत्मा समझो, बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब ये खेल पूरा होता है, अब घर वापस चलना है, भूल तो नहीं गए हो? मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने के लिए आया हूँ, क्या कठिन नहीं है? कठिन कब होता है? देवान में आने से कठिन हो जाता है और आत्माभिमानी बनकर रहने से सहज हो जाता है। तुम हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, कौन कौन? तुम और हम आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों से बाप पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर के बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते क्या? बाप कहते हैं नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है, अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए, एक एक करके सारे चक्र से छूट जाए तो 500-600 करोड़ सब कलाश हो जाएंगे, फिर दुनिया में रहेगा कौन? ये चक्र तो जरूर फिरना है। मैं अब फिर से आया हूँ, कल्प 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 के संगम में आता ही रहता हूँ। तीन बार कल्प क्यों बोला? दो बार कल्प बोलने से भी कार्य काम चल जाता है, तीन बार चार बार क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि चारों युगों की शूटिंग में चार अवस्थाएं समाई हुई होने के कारण सत्व प्रधान सत्व सामान्य रजो और तमो, जैसे हर युग की शूटिंग में एक कल्प समाया हुआ है, तो हर युग की शूटिंग के अंत में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। उन्होंने सिर्फ युग युग लिख दिया, किन्होंने? शास्त्र बनाने वालों ने। क्यों लिख दिया युग युग? क्योंकि उनको शूटिंग काल का ज्ञान है। कहते भी हैं कि पति तो पावन आओ, आकर के पावन बनो, ऐसे नहीं कहते कि हे पति तो पावन आओ, आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ। इसलिए बुलाते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, नहीं पतितों को पावन बनाने के लिए। तो ज्ञान सुनाना मुख्य धंधा हुआ या पतितों को पावन बनाना मुख्य धंधा हुआ? ज्ञान सुनाने के लिए तो नहीं बुलाते, मकसद है एम ऑब्जेक्ट ज्ञान सुनाने की नहीं है, पतितों को पावन बनाने की है। तो गाते भी है पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो, पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है, शांति धाम और सुख धाम तुम कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, अगर मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो जरूर आना पड़ेगा, ऐसे नहीं हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो पाठ बजाना ही पड़े हर आत्मा को। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब मुक्ति धाम से उतरेंगे। कौन? जिनको मुक्ति ही मुक्ति अच्छी लगती है, जिनको जीवन मुक्ति स्वर्ग के सुख अच्छे नहीं लगते। अभी भी कोई कोई हैं ऐसे हठ योगी जो कह देते हैं अगर ऐसे स्वर्ग आएगा तो हमें वो स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग के सुख सागवेच्छा करना, हमें ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। बाप कहते हैं कि स्वर्ग का सुख ये तो बाप का वर्षा है, बाप आते ही है नई दुनिया रचने, कोई नरक की दुनिया रचने के लिए थोड़े ही आते हैं। नरक की दुनिया किसका वर्षा है? रावण का वर्षा। अगर नरक की दुनिया में आए तो किसका वर्षा लिया? रावण का वर्षा लिया। तो अभी बाप आया हुआ है, नई दुनिया की रचना कर रहा है, तो कौन सा वर्षा लेना चाहिए, मुक्ति का या जीवन मुक्ति का? जीवन मुक्ति का वर्षा लेना चाहिए। तो कहते हैं कहाँ चलेंगे? परंतु जब स्वर्ग पूरा हो, हाँ, कहाँ चलेंगे? स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो? है? माया भी मेरी बेटी है क्या? माया भी मेरी बेटी है तो किसके राज्य में आना चाहते हो? उस समय भी पहले सतो होगा। कब? उस समय माने कुछ समय, माया का राज्य में भी पहले एकदम तमो नहीं हो जाएगा शुरू, उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो होगा, फिर तमो होगा। जो पवित्र आत्माएं आती हैं वो पहले दुख पा नहीं सकती, आने से ही थोड़े पाप करेंगी, परंतु आत्मा तो सतो रजो तमो से पाप करनी है ना, इस चक्र को तू समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि हो पाएंगे। क्या बात, दुनिया में कितने मठ पंथ संप्रदाय फैले हुए जिनका विस्तार भारत से ही हुआ है विदेशों तक, और सबकी बहुत वृद्धि हो चुकी है। अरविंद आश्रम को ही ले लो, कितनी वृद्धि हो गई। लेकिन हमारी वृद्धि अभी क्यों नहीं हो रही है इतनी? ये किस समय की वाणी? जिस समय बाबा जीवित थे उस समय की बात बताई। उस समय लंदन आदि में सेवा केंद्र नहीं खुले थे। मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक विदेशों में सेवा केंद्र नहीं खुले। तो बोला अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुलते, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स भी तो इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास लिफ्ट होती है अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आना। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है, सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। अच्छा बच्चों ने समझा? बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर तो खराब नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की? फिर बाप से माफी लेनी चाहिए, जो बाप हमको माफ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ, किससे कहते हैं भगवान, किससे कहते हैं? कोई तो बच्चे होंगे जिनसे कहते हैं कि मैं तुमको भगवान भगवती मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ कि ऐसे ही छोड़ के चले जाता हूँ। मैं बनाता हूँ कि तुम अपने आप बन जाते हो अपने पुरुषार्थ से? पुरुषार्थ से बन जाते हो अपने आप, बाप नहीं बनाते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ, मैं, कोई मनुष्य नहीं बनाते हैं, दीदी दादी दादाएं नहीं बनाए देंगे। स्वर्ग का भगवान भगवती बनाता हूँ, ऐसे नहीं नरक का। तो मेरी आज्ञा मानो ना, बनाता हूँ तो कब बनाऊंगा, जब मेरी आज्ञा मानोगे ना। नंबर वन फरमान है कि देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी क्या हो जाता है, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है, विकार में मत जाओ। ये महादुश्मन है, इन पर अगर जीत नहीं पाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित तो बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, ये लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुर दिखानी पड़े। हम बाप के बने, फिर ये माया कैसे विघन डालती है, कैसे विघन डाल सकती है। हाँ तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे क्या। लो ये इसी जन्म में नर से नारायण बनना चाहते हैं, ये इसी जन्म में मनुष्य से देवता बन जाएंगे, हंसी उड़ाते हैं। यहाँ तो धारणा चाहिए, या तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, तभी सतोप्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों के प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। किसका याद प्यार गुड मॉर्निंग है, बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। माता पिता नहीं बोला अक्सर मुलियों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग बोलते, क्या अलग अलग होता है माता पिता और बाप दादा हैं? तो बाप दादा और माता पिता अलग अलग होते हैं या एक ही है। माता पिता कहा तो जरूर एक मेल एक फीमेल हुआ, और बाप दादा कहा तो जरूर कंबाइंड है, एक ही शरीर में दोनों। बाप माना बाप, दादा माना बड़ा भाई। बड़ा भाई कौन हुआ फिर, ब्रह्मा कृष्ण की सोल दादा, और बाप प्रजापिता। बाप और दादा जैसे अव्यक्त वाणी में माता शिव बाप बोले, बाप दादा बोले, ब्रह्मा बाप बोले, ऐसे आता है ना, तो जरूर अंतर है ना। तो बाप दादा माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग ऐसे अक्सर मुरलियों में बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। यानी जो वाणी पहले चलती थी मॉर्निंग में चलती थी, फिर गुलजार दादी के द्वारा क्या होता है, रात को चलती है, तो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, क्या माता पिता की नमस्ते नहीं, बाप दादा की नमस्ते नहीं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, दे अभिमानी बच्चों को नमस्ते नहीं, जो दे अभिमानी में बैठे हैं उनको नमस्ते नहीं करते, नमन नहीं करते, झुकते नहीं है, किसको झुकते हैं, जो रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं उनको बाप रूहानी बाप झुकते हैं। 15:10:75 की हेडिंग दिया है, आत्मघाती महापापी न बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियां। आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे थे और उनकी माला स्मरण कर रहे थे, किनकी, बच्चों की माला। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा सर्वश्रेष्ठ पार्ट है, वो भी सारे कल्प में इसी संगम युग पर ही महिमा योगी बनते हैं। इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं, और योग में परमात्मा बाप महिमा नहीं गाता। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो, एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो, और जो बाप के गुण हैं वह शक्तियां हैं उन दोनों में मास्टर बनते हो। साथ साथ आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की भी मैं सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम इस महिमा का भी प्रैक्टिकल में इस स्टेज का अनुभव सत्युगुण में करने की बात नहीं है, कब की बात है, कब का गायन है सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण आदि आदि संगम युग पर अभी अनुभव करते हो, अनुभव करते हो प्रैक्टिकल जीवन में सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम। सोलह कलाएं क्या है, मर्यादाएं क्या है, इन सब बातों की नॉलेज इस समय धारण करते हो तो डबल महिमा की योगी बनते हो, दो जहान के मालिक बनते हो, डबल पूजा की योगी बनते हो। डबल पूजा कौन सी है, एक तो तुम्हारी साकारी मूर्ति भी बनती है और दूसरी शालिग्राम आत्मिक स्टेज की भी तुम्हारी पूजा होती है और शिव बाबा की सिर्फ निराकारी स्टेज शिवलिंग की ही पूजा होती है। मूर्तियां तो कहीं कहीं रखी होंगी, कहीं देखी शिव के मंदिरों में मूर्ति है, शिव के मंदिरों में शिवलिंग निराकार की निराकार की अवस्था की यादगार देखी है या मूर्ति देखी, मोस्टली शिवलिंग ही रखा होता है, मूर्ति नहीं होती है। शंकर की मूर्ति होती है लेकिन पूजा के लिए दिखाते नहीं है, बीच में नहीं रखी होती है, बीच में कौन सी मूर्ति होती है, शिवलिंग। तो तुम डबल पूजा की योगी बनते हो, मेरी तो सिंगल पूजा होती है, दो जहान के मालिक तुम बनते हो, डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति इन दोनों के तुम अधिकारी बनते हो। मुझे क्या मिलती है, मैं तो मुक्ति धाम का ही वासी हूँ, आता भी इस नरक की दुनिया में हूँ और फिर वापस कहाँ जाता हूँ, सुखधाम में नहीं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, वो ही मुक्ति धाम। तो तुम डबल अधिकारी बनते हो, डबल ताजधारी बनते हो, डबल ताजधारी कौन से, प्योरिटी के ताज भी तुमको मिलता है और जिम्मेवारी का ताज भी तुम उठाते हो, स्थूल रतन जड़ ताज भी तुम्हें मिलता है क्योंकि तुमने जिम्मेवारी उठाई है नई दुनिया की स्थापना की। डबल अहिंसक बनते हो, कौन से डबल अहिंसक, एक तो स्थूल हिंसा भी नहीं करते हो, क्या वो कौरव और यादव बाहुबल के प्रयोग की बातें सोचेंगे और तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी कि हम बाहुबल चलाएं, क्या धन बल का उपयोग करें और किसी के ऊपर जीत पाए लें या बाहुबल का उपयोग करें किसी के ऊपर जीत पाए लें, नहीं तुम्हारी बुद्धि में कौन सा बल चलेगा, बाबा किया। इसलिए क्या बोला, बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योग बल वाले राजा ही पावेंगे, कहाँ की बात है। अभी संगम युग की बातें हैं तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, क्या तुम काम कटारी की भी हिंसा नहीं करते और स्थूल हिंसा भी बाहुबल की हिंसा भी नहीं करते। तो डबल बाप के लाड़ले और सिकिले बच्चे बनते हो, क्या डबल बाप के, ये डबल बाप कौन सा होता है, डबल बाप माने एक ब्रह्मा बाप, अगर ब्रह्मा को बाप कहें तो वर्षा मिलना चाहिए, वर्षा तो कुछ मिलता नहीं, हाँ आत्माओं का बाप और मनुष्य सारी मनुष्य शक्ति का बाप, सारी मनुष्य शक्ति उन दोनों को अपना बाप मानती है। आत्माओं का बाप वो तो शिव है ही, निराकार को तो सारी दुनिया मानती ही मानती है, लेकिन एडम और आदम जिनको कहा जाता है उनको भी सारी दुनिया मानती है, शक्ति का आदि पुरुष आदि देव जिसको कहा जाता है भारतीय परंपरा में। तो तुम डबल बाप के लाड़ले और सिकिले बच्चे बनते हो, सिकिले मन बहुत सिख से मिले हुए बहुत समय के बाद ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे बालक बन करके विश्व के मालिक भी बन जाते हैं, ऐसे अपनी महिमा क्या स्वयं भी सुमिरण करके हर्षित होते हो, इस सुमिरन से कभी भी माया का बार नहीं हो सकेगा, इस सुमिरन से कि हम डबल बाप के बच्चे हैं, एक मनुष्य शक्ति का बाप प्रजापिता, वो भी प्रैक्टिकल में अभी मौजूद है। प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता, किसके साथ होता है? जहाँ प्रजा होगी 500 करोड़, वहाँ प्रजा का पिता भी होगा। 500 करोड़ मनुष्य शक्ति की एक भी मनुष्य आत्मा इस शक्ति पर अगर है पतित स्टेज में, तब तक प्रजापिता वापस नहीं जा सकता, वो बांधा हुआ है जैसे शिव बाप बांधा हुआ है। तो इस सुमिरन से कभी भी माया का वार नहीं हो सकेगा, किस सुमिरन से? कि हम डबल बाप के बच्चे हैं प्रैक्टिकल में। बाप आज देख रहे थे कि कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुंचे। मुख्य बात है बाप समान सर्वगुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने, सर्वशक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है, सर्वशक्तियों का वर्षा। सर्वशक्तियों मुख्य शक्तियां कौन कौन सी बताई? जैसे तीन देवताएं मुख्य हैं, वैसे तीन शक्तियां भी मुख्य हैं। कौन कौन सी? सहनशीलता, निर्णय शक्ति और परख शक्ति। सहनशीलता सब गुणों का राजा, और निर्णय शक्ति और परख शक्ति। तो प्रैक्टिकल जीवन में सर्वशक्तियों का वर्षा कहाँ तक अनुभव किया है? साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है? गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है, और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक ही भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा की योगी नहीं कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में गुणों की कमी है। सोलह कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बनाए सके और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में लाए सके। बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा के प्रति कार्य में लगाए सके। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उनकी आवश्यकता प्रमाण वरदानी रूप में दे सके। सर्व आत्मा में बैलेंस रख सके, अर्थात अभी अभी लखफुल और अभी अभी लाखुल बन सके, अभी अभी महाकाली रूप और अभी अभी शीतला रूप बन सके। ऐसी सब विशेषताएं अर्थात सोलह कल संपन्न, इसलिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्वात्मिक शक्तियों, मन बुद्धि संस्कार, इन सब के ऊपर अधिकार चाहिए। ऐसा अधिकारी ही सोलह कला संपन्न बन सकता है। कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता और नहीं अनुभव करा सकता है। इसी रीति से अपने को चेक करो कि सर्व विशेषताएं धारण किए हैं, अर्थात सोलह कला संपन्न बने हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र भी अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र में भी न हो, न संकल्प में आए विकार और न स्वप्न में आए। संकल्प में नहीं आएंगे तो स्वप्न में भी नहीं आएंगे, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम श्रीमत अनुसार, अर्थात मर्यादा प्रमाण। संकल्प भी व एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर न हो। अमृत वेले से रात के सोने तक कदम मर्यादा अनुकूल, स्मृति वृत्ति दृष्टि सदा ही मर्यादा प्रमाण। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो? डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता, काम महाशत्रु, स्वप्न में भी वार न करे, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे डबल अहिंसक आत्मा घात का महापाप भी नहीं करते हैं। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण तत्व प्रधान स्टेज से नीचे गिर करके घात नहीं करते, ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। क्या कहा? कौन सी ऊंचाई? बाप की याद में आत्मा ऊपर टिकी हुई है और बुद्धि नीचे नहीं आती है तो आत्मघाती कहेंगे है? तो आत्मघाती हो नहीं सकते। अगर ऊपर टिकी हुई बुद्धि कोई भी कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों के रस में आसक्त हो गई तो क्या कहेंगे? नीचे आ गई। नीचे आ गई माना आत्मघात जरूर होगा। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए भी कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साक्षात अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती है। पहला खून किस बात का है? संकल्पों का खून। संकल्प ही बीज है। खून करना माना हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है वो माया के वश परमत वश कुसंग वश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हैं तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो। और जो ईश्वरीय विवेक का खून करेंगे संकल्पों का खून करेंगे वो फिर मनसा से वाचा में और वाचा से कर्मणा में भी आ जाता है। ये खून खून भी करने वाले बन जाएंगे। तो दिव्य बुद्धि का खून तो नहीं करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं था लेकिन कर लिया। न चाहते हुए भी हो गया। हो गया तो गोया ये है ईश्वरीय विवेक का खून कि जो नहीं चाहते थे वो विकारों के बस हो गया। झूठ बोलना चोरी करना ठगी करना धोखा देना इसको भी हिंसा व पाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? सूत्रपन के संस्कार स्वभाव व बोल किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो तो होया सूत्रों की वस्तु चोरी करते हो। जबकि ये ब्राह्मण की वस्तु नहीं है तो दूसरों की वस्तु यूज करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना ऐसे झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी सब कुछ आपका है तन मन धन सब तेरा फिर मैंपन में मोह बस होकर के चलते हो। तो मैंपन लाना या मेरा समझना ये भी झूठ हो गया ना। कहना तेरा और करना मेरा तो ये झूठ हो गया ना। वायदा करते हो तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं क्या बात? वायदा क्या करते हो? तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं 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 उठूं क्या? बिंदी उठेगी बैठेगी क्या है? तुम्ही से बैठूं तुम्ही से बोलूं बिंदी बोलेगी और तुम्ही से सर्व संबंध निभाओ। संबंध तो समान स्थिति वालों के साथ होता है लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध और संपर्क रखते हो। रखना किससे चाहिए प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ। प्रैक्टिकल कब होता है? साकार में हो तो प्रैक्टिकल। अगर साकार ही नहीं तो प्रैक्टिकल थोड़े कहेंगे। तो तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं ऐसे कहते तो हो लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध और संपर्क रखते हो। संबंध किसे कहा जाता है और संपर्क किसे कहा जाता है? संबंध कहा जाता है संपूर्ण बंधन। कर्मेंद्रियों के साथ ही संपूर्ण बंधन में बंधना होता है। प्रगाढ़ बंधन जो होता है उसको कहते हैं संबंध और संपर्क। संपर्क हल्का होता है संबंध गहरा होता है। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ में रखते हो तो ये खून हो गया ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई अगर वो नहीं निभाते हो तो ये भी झूठ हो गया ना। ऐसी धोखा और ठगी कौन सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। ये हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है साथ साथ ब्राह्मण परिवार भी धोखा देते हो। ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देने के निमित्त बनते हो, कहना एक और करना दूसरा, अपनी कमजोरी को छिपा करके बाहर से अपना नाम वाला करना और अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, एक दूसरे को धोखा देते हो ना। कोई भी गलती करके छिपाना ये भी धोखा देना है, ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्यात्मा, महान आत्मा जिससे कोई प्रकार का पाप न हो, ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ तेज जो अभी सुनाई वो कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते, तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे व माला स्मरण कर रहे थे। अच्छा, ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यता संपन्न, गायन और पूजन योग्य डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद करो। नमस्ते। ओम।